आमाल चौथा बाब। जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए। वो सख्त रंजीदा हुए क्योंकि ये लोगों को तालीम देते और यसू की नज़ीर देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे, और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बहुतेरे ईमान लाए, यहां तक कि मर्दों की तादाद 5,000 के करीब हो गई। दूसरे दिन यूं हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकीह और सरदार काहिन हन्ना और कायफा और यूहन्ना और इस्कंदर और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि
तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया।
उस वक्त पतरस ने रूहुल कुद्स से मामूर होकर उनसे कहा,
ऐ उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बाजपुरस की जाती है जो एक नातवां आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यसु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम मेमारों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सकें।
जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है तो ताज्जुब किया, फिर उन्हें पहचाना कि ये यसू के साथ रहे हैं, और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ न कह सके। मगर उन्हें सदर अदालत से बाहर जाने का हुक्म देकर आपस में मशवरा करने लगे कि
हम इन आदमियों के साथ क्या करें,
क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर रोशन है कि उनसे एक सरीह मोजजा जाहिर हुआ और हम इसका इनकार नहीं कर सकते।
लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज्यादा मशहूर ना हो, हम उन्हें धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात ना करें।
बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यसू का नाम लेकर हरगिज बात न करना और न तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि
तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने,
क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें।
उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के सबब से उनको सजा देने का कोई मौका न मिला, इसलिए कि सब लोग उस माजरे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे, क्योंकि वो शख्स जिस पर यह शिफा देने का मौजजा हुआ था 40 बरस से ज्यादा का था। वो छूटकर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा की के
ए मालिक, तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। तूने रूल कुद्स के वसीले से हमारे बाप अपने खादिम दाऊद की जबानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातल ख्याल किए। खुदावन और उसके मसीह की मुखालफत को जमीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादिम यसु के बरखिलाफ, जिसे तूने मसा किया, हेरोदीस और पुंतुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलियत से ठहर गया था वही अमल में लाएं। अब ऐ खुदावन, उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दिलेरी के साथ सुनाए, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादिम यसु के नाम से मोजिजे और अजीब काम जहूर में आए।
जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे, और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना न कहा बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थीं, और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यसू के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था। क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज न था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे, फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुवाफिक बांट दिया जाता था। और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लकब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था और जिसकी पैदाइश कुप्रुस की थी। उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी।